आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 15। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वज्जायाणम्, नमो लोए सुवसाहूणम्, लक्ष्मी निवास निलयम् विलीन विलयम् निधाय रतिवीरम् आत्मानुशासनमहम् वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य रचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है। इस पर मोहनोर जी वर्णी, सहजानंद जी, इनके प्रवचन चल रहे हैं। उनकी जो पुस्तक है उसमें पृष्ठ संख्या 68 पर आ गए हम। 68 ये 10 प्रकार के जो सम्यक से उसकी चर्चा चल रही थी, और उसमें जो विपरीतता जीव की कैसी कैसी होती है तो उसमें 3 प्रकार से बताए थे। कल थे क्या? अब नहीं थे। कौन से? स्वरूप विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता और कारण विपरीतता। स्वरूप विपरीतता ने मैं स्वयं चैतन्य हूँ परंतु अपने को ये शरीर रूप मानता है या अन्य मति मानते हैं, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु उससे उत्पन्न हुआ है जीव, और ये बिखर जाते हैं और जीव नष्ट हो जाता है, ऐसे उनकी मान्यता है। चारवाक मत के बारे में बताया था उन्होंने कि इतनी तो जिंदगी है पर वो किसने देखा है, शरीर भस्म हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो इसलिए खाओ पियो मौज करो, ऋण निकाल के भी कर्जा निकाल के भी घी पियो, घी पियो है ना, मजा करो, भोग करो। ये तो स्वरूप विपरीतता की बात हुई। भेदाभेद विपरीतता बहुत अच्छी तरह से बताया था कि जो भेद है भिन्न है उसको अभिन्न मानता है जानता है, उसमें दोनों लेना। तो राग द्वेष रूप जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि जीव में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो राग द्वेष करे। जीव के पर्याय में राग द्वेष हो रहा है फिर वो उसके शक्ति का कार्य नहीं है, ये बात है। फिर भी उसके साथ अपने को राग में मानता है, अपने को भी और दूसरे को भी, जैसे अपने को देखता है वैसे अन्य को भी देखता है, स्वयं को शरीर रूप देखता है, राग में देखता है, दूसरे को भी ऐसा ही देखता है। जो भिन्न है उसको अभिन्न मानता है, भेद और अभेद का उसको, यानी भेद को अभेद किया उसने, ये बात कल हुई। अब बता रहे अभेद को भेद कर रहा, जो अभेद है उसको भेद कर रहा है। नीचे का पैराग्राफ है ना, वहां से पढ़ेंगे। अभेद को भेद करने रूप भेदाभेद विपरीत, जिस प्रकार जो चीज भिन्न है उसे आत्मा से तन्मय मान लेना भेदाभेद विपर्य है, इसी प्रकार यानी जैसे भिन्न चीज को अभेद मान लेना ये भी विपरीतता है, वैसे ही यहाँ तो उल्टे प्रकार, अभिन्न को भिन्न मान लेना यह भी विपरीत श्रद्धा है ना। जीव का ज्ञान जीव से अत्यंत अभिन्न है, उससे कभी जुदा हो ही नहीं सकता, वो तो उसका लक्षण है, उसका स्वरूप है। जैसे आग की गर्मी यानी अग्नि उष्ण होता है ना, उष्णता अग्नि का स्वभाव है, उससे दूर नहीं हो सकता। आग की गर्मी आग को छोड़कर कहाँ रहती है? आग में ही रहती है। गर्मी निकल जाए आग से तो फिर आग की कोई सत्ता रही क्या? आग नहीं रहती है। इसी प्रकार 69 नंबर का ज्ञान यदि जीव से निकल जाए, कभी निकलता नहीं हो, त्रिकाल असंभव है, तो कल्पना से सोचो फिर क्या रहा। जीव ज्ञान में है फिर भी कुछ सिद्धांत ऐसे है जो जीव को न्यारा और ज्ञान को न्यारा मानते। कुछ सिद्धांत ऐसे नहीं, कोई ऐसे कोई दर्शन है जिसको अन्य धर्मी जो कोई है अन्य मत वाले ऐसे मानने वाले हैं कि ज्ञान जुदा है, जीव जुदा है, और ज्ञान का जीव के साथ संयोग होता है, समवाय कहते हैं उसको, और फिर वो जानने लगता है, ऐसी उनकी मान्यता है। तो जीव से ज्ञान कभी जुदा हो ही नहीं सकता। सुनते हुए आश्चर्य होगा, जीव ज्ञान रहित है ऐसा वो मानते हैं। जब जीव के ज्ञान का संबंध होता है तब ज्ञान की चेष्टा होती है, ऐसा मानने वाले भी कोई सिद्धांत है। और इन सिद्धांतों से फल यह निकाला, जब यह ज्ञान जीव से बिल्कुल न्यारा हो जाए तो जीव का मोक्ष होगा। यानी कितनी अटपटी बातें लगती हैं, हमें तो सुनकर भी आश्चर्य लगता है। जब तक ज्ञान जीव में चिपका है तब तक मोक्ष नहीं है जीव का, ज्ञान मिट जाए तो जीव का निर्वाण होगा, ऐसा इस सिद्धांत का फल निकलता है। विपरीत मंतव्य, मंतव्य ने मान्यता, विपरीत मंतव्य में पूर्व में मूल आशय का अनुमान। यद्यपि ऐसा मंतव्य करने वाले की दृष्टि पहले पूर्व में यह रही होगी कि संसारी जीव का जो कुछ ज्ञान है छुटपुट अधूरा पराधीन इंद्रियज जो ज्ञान है वह मिटेगा, अर्थात छुटपट राग द्वेष भरा ज्ञान दूर होगा तो जीव का मोक्ष होगा। यहाँ तक तो यह बात है, किंतु यह दृष्टि हो जाने पर, सर्वथा यह मान लिया जाने पर कि ज्ञान जीव से भिन्न है, ज्ञान के संबंध से जीव को दुखी होना पड़ता है, ज्ञान मिट जाए तो जीव सुखी हो जाए, यह सिद्धांत एकदम विपरीत मार्ग में चला गया। अभी ऐसे मान्यता चलती है, अभी उसको कौन क्या करे। इसमें अभिन्न चीज को भिन्न मान लिया है, यह भेदाभेद विपर्यय नाम का विपरीत आशय है। पहला वो विपरीत था, जो भिन्न था उसको अभेद मान लिया राग द्वेष को, और जो ज्ञान जीव का स्वरूप है उसके अभेद है उसके, तो उसको भिन्न मान लिया। ये दोनों ही विपरीतता है। अब ये कारण विपर्य बता रहे हैं। तीसरा विपरीत आशय है कारण विपर्य। किसी वस्तु के परिणमन का कारण कुछ और है और मान लिया जाए कारण कुछ और, क्या कहते हैं, कारण कुछ अन्य है और हमने माना अन्य, इसको कहते हैं कारण विपर्य। जैसे सब पदार्थ अपनी परिणति की योग्यता रखते हैं, यानी प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है, प्रत्येक द्रव्य परिणमता है, स्वयं ही परिणमता है, और उन पदार्थों में ऐसा स्वभाव भी पड़ा है कि वह विभाव रूप परिणमे, तो किसी योग्य पर पदार्थ को निमित्त पाकर परिणमे। विभाव रूप परिणमन अन्य किसी के निमित्त में, योग्य निमित्त उचित जो कहेंगे, क्योंकि पर का निमित्त पाए बिना कोई पदार्थ विभाव रूप परिणम जाए तो उसका विभाव परिणमन अमिट हो जाएगा। अमिट यानी वो कभी मिट नहीं सकता, पराधीन हो गया। यानी वो पर का निमित्त नहीं है और फिर भी वो जैसे सिद्ध भगवान, अभी उनके कर्म का निमित्त नहीं है फिर भी विभाव रूप परिणमित करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जहाँ जहाँ विवाह परिणमन है वहाँ किसी अन्य का, ये जीव स्वयं उसका लक्ष्य करके विवाह रूप परिणमित हो रहा है। ऐसा नहीं कि कर्म इसको कराते हैं जबरदस्ती, लोगों की ये भूल हो जाती है। जब यहाँ बताए निमित्त के बिना नहीं होता तो निमित्त ही कराता है, ऐसी उल्टी मान्यता भी कर लेते हैं, वो भी कारण विपरीतता में आ जाती है बात। फिर मिटेगा कैसे, यानी यदि परिनिमित्त का यानी कुछ है ही नहीं, वो स्वभाव अपने से ही स्वयं से ही कर रहा है तो मिटने का कोई चांस नहीं है। और फिर ऐसा हो गया, शुद्ध हो गया, फिर दोबारा विभाव करने लगा तो फिर मोक्ष पाने का कोई यानी फल भी नहीं रहा, क्योंकि दोबारा फिर अशुद्ध हो जाए, वह तो स्वभाव बन गया। प्रत्येक पदार्थ में परिणमने की योग्यता है, वह अपने द्रव्य गुण के कारण प्रतिक्षण प्रतिक्षण परिणमता रहता है। किंतु वस्तुगत मर्म का परिचय न हुआ। वस्तुगत है ना, वस्तु में ही वो ये उसका जो वस्तु की जो वस्तु व्यवस्था उसके बारे में पता नहीं है कि वस्तु स्वयं, वस्तु है ना द्रव्य, स्वयं ही परिणमता है, उसमें ऐसी शक्तियां हैं पूरे पूर्व, स्वयं का परिणाम स्वयं करे बिना किसी पर की अपेक्षा के, ये जो बात मालूम नहीं है तो यह कल्पना कर ली इन सब का करने वाला कोई समर्थ एक ईश्वर है। क्योंकि इसको मालूम नहीं ना वस्तु व्यवस्था, तो मान लिया कोई अन्य करने वाला है, वह इन पदार्थों को कर रहा है। भला हम आपको दो चार काम करने की बात पड़ी हुई है तब तो इतनी हैरानी रहती है, क्या कहते हैं, घर के थोड़े काम हैं, अभी घर का तो रोज रूटीन संभाल लेते कैसे भी, दो चार मेहमान आने दो, क्या होती है हालत, हाँ हाँ बहुत होती तो कहते तो इतनी हैरानी होती है तो जगत के अनंत पदार्थों का काम करें तो उनके हैरानी का कोई ठिकाना है, तो ईश्वर कितना हैरान होता होगा यदि वो करने वाला होता तो। ईश्वर का तो आदर्श स्वरूप है जिसकी आराधना करके हम आप सब अपना कल्याण कर सकते हैं, और वो स्वयं इतना दुखी हो तो उसकी क्यों आराधना करें तो पदार्थ परिणमता तो अपने उपादान कारण से है, पर का निमित्त पाकर परिणमता अपनी परिणति से है, लेकिन इस वस्तु स्वरूप को ओझल करके कुछ से कुछ मान लेना यह सब कारण विपर्य है। कल्पना से मान लेता है, ऐसा भी मान ले, कर्म ही सब हमको करा, वही रुलाता है, वही हंसाता है, वही क्या क्या हमको सब कुछ करता है, और हम तो पराधीन है, ये जीव जो जानन स्वरूप है और वो जड़ हमको कंट्रोल कर रहा है, ये सब सारी कारण विपरीतता ही। अपरिचय में प्रकृति की प्रेरणा, जब मनुष्य को किसी बात का सही पता नहीं रहता है तो प्रकृति उसमें ऐसी बुद्धि उत्पन्न करती है कि कोई गुप्त शक्ति है जो इसे परिणमा रही है। बहुत पहले समय में जब भारत में रेलगाड़ी का इंजन चलने को था तो यह जानकर कि आज यहाँ से रेल निकलेगी, लोगों की भीड़ जुड़ जाती थी उसे देखने के लिए, और देखने पर उस समय कुछ लोग यह कल्पना करते थे यह अपने आप तो चल ही नहीं सकती, न इसमें घोड़े जुते हैं, न कोई आदमी इसे खींच रहे हैं, यह जो आगे काला काला लगा है इसमें काली माई रहती है, वही इस रेलगाड़ी को चलाती है। उन्होंने स्वयं देखा होगा तो उनको पता है क्या क्या वहाँ के लोग मानते थे, अरे उन्हें पेश पुरुषों का बोध न था कि ऐसे भाप बनती है, इसके टक्कर लगने से यह डंडा चलता है, इस डंडे की टक्कर से ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि पहिए घूमने लगते हैं, ऐसा बोध न होने से ऐसी दृष्टि बन गई इसे काली देवी चलाती। तो यूं ही समझिए, जब वस्तु के उत्पाद वे द्रव्य आदि का स्वरूपगत परिचय नहीं है तो कुछ भी कल्पना बनाई जा सकती है। ये तो पदार्थ कैसे परिणाम थे, इनके में कोई जानने की शक्ति नहीं है, कैसा परिणमन हो रहा है, तो ये मान लेता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, बाहर की भी जो कोई बातें बनती है, नहीं नहीं वो ईश्वर की शक्ति आगाध है, कहने की भी प्रघात है, आप लोगों में किसी के साथ बात करो अन्य मतियों की, ये सब ईश्वर की ही लीला समझते, हमको बुद्धि भी उसने दी और उसने ही हमको मदद कर दी, उसने संकट से छुड़ा दिया। तो कहते वस्तु के उत्पाद व्यय द्रव्य आदि का स्वरूपगत परिचय नहीं है तो कुछ भी कल्पना बनाई जा सकती है। अभी जितने मराठी में जिसकी डोकी तितकी कल्पना, जितने जीव है उतने उसकी अलग अलग कल्पनाएं हो सकती है, इन समस्त विपरीत आशयों से रहित आत्मस्वरूप का श्रद्धान होना यही सम्यक्त्व है। कौन कौन से विपरीत आशय मनीषा बहन, तीन बताए, उन्होंने अभी बताया ना अभी, और कौन से? स्वरूप विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता और कारण विपरीतता, ये याद रखना, मैं पूछूंगी कल फिर। तीन है ये। अभी तक हमने आठ भेद देखे थे, अभी अवगाढ़ और परम अवगाढ़ सम्यक्त्व के भेद चल रहे थे। पहला कौन सा था? आज्ञा सम्यक्त्व, मार्ग सम्यक्त्व, उसके बाद उपदेश और बीज, उपदेश और सूत्र, फिर बीज और विस्तार और संक्षेप, इतने हुए थे ना, और अर्थ, आठवां अर्थ था। बीज सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व ने एक बीज शब्द कहते, जैसे ओमकार ध्वनि सुनी और उसमें से इतना अर्थ भाषित हुआ, ये तो अर्थ भाषित हुआ। ऐसे कोई ऐसे एक शब्द सुनकर विस्तार समझ में आ जाए, यानी तत्व निर्णय हो जाए और फिर सम्यक्त्व हो जाए, या दूसरी पद्धति से कर्णानुयोग की कोई समस्या है, गणित है, उसमें उपयोग की सूक्ष्मता होती है और फिर वहां से यानी महानता तो आती है ना ज्ञान की, और वहां से उपयोग अपने ओर चला जाता, तो उसको बीज सम्यक्त्व कहते हैं। अभी यहाँ हम पढ़ेंगे, 70 पेज है, 70, अवगाढ़ और परम अवगाढ़ सम्यक्त्व। अब एक अवगाढ़ सम्यक्त्व सुनिए, उसका भाव यह है, अंग व अंग बाह्य सहित। ये अंग क्या होता है और अंग बाह्य क्या होता है? ये 12 अंग है ना, द्वादशांग जिनवाणी कहते, 12 अंग, और अंग बाह्य ने 14 प्रकीर्ण की। समस्त जो श्रुत के अक्षर कितने हैं? हाँ, उसको कहते इकट्ठी माइनस एक, तो इतने अक्षर है, तो उसमें कितने पद होते हैं? पद कितने होते हैं उसमें? एक एक पद में कितने अक्षर होते हैं? एक पद में अक्षर कितने होते हैं? कोई बात नहीं। हाँ, ये पद किसको कहते हैं? तो शब्द को पद कहते हैं। जैसे हमने कहा ना, आप रोज आना, ये हमने वाक्य बना दिया, वाक्य बन, शब्दों से वाक्य होता है, ये हमारा रेगुलर जो हम लौकिक में वापरते उसको कहेंगे अर्थ पद। एक होता है प्रमाण पद, जैसे हम श्लोक वगैरह जो है ना, नमः समय साराय, 8 के 4 होते हैं तो 32 मिलकर एक हो जाएगा। जैसे मंदाक्रांता शार्दूल विक्रीडित, उसके अपनी अपनी निश्चित संख्या होती है, तो उसको कहते हैं प्रमाण पद। और द्वादशांग की रचना जो हुई है वो मध्यम पदों में हुई है। मध्यम पदों में कितने अक्षरों का एक पद है वहां पर? 1634,83,07,888, इतने अक्षरों का एक पद। ऐसे वो पहला 1634 करोड़ लिखना, 1634,83,00,000 83,83,07,000, अभी 7 नहीं करना, 07 करो, क्यों लाख के बाद एकदम 7,000 लिया ना, तो 07 करना पड़ेगा, एक यूनिट बढ़ेगा ना उसमें, 07888 888,888। क्या क्या लिखा मनीषा बेन, पढ़ो। अच्छा, ऐसे बीच बीच में हजार हजार लिखा आपने, कोई बात नहीं, ठीक है, बोलने में अच्छा पड़ता है, कोई बात नहीं। हाँ, अभी नीचे लिखो 1634,83,07,888, इतने अक्षरों का एक पद। और ऐसा वो पहला आचारांग है जो है, उसमें तो सबसे कम से कम 18,000 पद है। ऐसे पूरे द्वादशांग के 112 करोड़, उसने वो सब टोटल जो पद है ना, ये सब इतने पदों के द्वादशांग है, तो उसमें तो ये इकट्ठी माइनस एक जो आपने कहा ना, 2^64 - 1, ये टोटल अक्षर हुए, उसको ये पदों की संख्या जो है 1634 करोड़ वगैरह, उससे भाग देंगे तो जो संख्या आएगी वो 112 करोड़ और वो सब पूरी आती है, तो वो उसमें से तो 12 अंग बने और कुछ अक्षर बाकी रह गए, पूरा पद नहीं हुआ, तो उसमें से 14 प्रकीर्णक बने, उसको अंग बाह्य कहते हैं। ये अपना हुआ है धवला में भी, पहले भाग में हमने विस्तार से देखा था इसको। बहुत बहुत जगह ज्ञान मार्गना में भी लिया था, अभी धवला में भी हुआ। शब्दों का के अक्षरों का, अक्षरों का हाँ ठीक है। अब एक अवगाढ़ सम्यक तो सुनिए, उसका अभाव है कि अंग व अंग बाह्य, समय में अंग अंग बाह्य का अर्थ क्या होता है, सहित समस्त आगम का बहुत ऊंचा ज्ञान श्रुत ज्ञान होने के साथ साथ, इसको श्रुत केवल ही कहेंगे, पूरा समस्त अंग अंग बाह्य का ज्ञान होता है जो सम्यक्त्व की आभा होती है, सम्यक्त्व विलासमान होता है, वह अवगाढ़ सम्यक्त्व है, वो समय दृष्टि के ही होगा।
अवगाढ़ और परमावगाढ़ का डिफरेंस चाहिए था यहाँ।
अच्छा, आपको अवगाढ़ और परमावगाढ़ का रेफरेंस चाहिए था ऐसा ये बोल रहे हैं, तो ये बात यहाँ आती है। पहले आपने कहीं पूछा था ना, ठीक है, और परमात्मा प्रभु केवल ज्ञानी है, अंग बाह्य जो कुछ अक्षर बाकी रहे ना, जैसे हमने 24 संख्या मान लेते, उसको 5 से भाग दिया, 5 चौक 20, 4 बाकी रहे, तो बाकी जैसे रहते हैं ऐसे ही जो टोटल अक्षर है उसको पदों के अक्षरों से भाग दिया, तो जो फुल फिगर आ गई ना उसमें से तो अंग बने, और जो कुछ थोड़े शब्द रहे, थोड़े अक्षर रह गए उसमें से 14 प्रकीर्णक बने। ये मुनियों के आचार संबंधी वो सारे है, वो उसको अंग बाह्य कहते हैं, और ये जो 12 अंग है उसको अंग प्रविष्ट कहते हैं, और सबको मिलकर द्वादशांग कहने की पद्धति है। तो जो श्रुत केवली है उनका जो सम्यक्त्व है उसको अवगाढ़ सम्यक्त्व कहा, और जो केवल ज्ञानी है उनके ज्ञान में समस्त लोक और काल की बात स्पष्ट ज्ञात है, उस ज्ञान के साथ जो सम्यक्त्व विराजता है वो तो सब कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं, उसका नाम परमावगाढ़ सम्यक्त्व है। इस प्रकार इसमें सम्यक् दर्शन के 10 भेद बताए गए हैं, आज्ञा मार्ग उपदेश सूत्र बीज विस्तार संक्षेप और अर्थ, पहले अवगाढ़ और परमावगाढ़ हो गए ना याद, मुझे भी पहले याद नहीं थे अभी हो गए। अब यहाँ 12, 13, 14 तीन श्लोक है, आज्ञा सम्यक्त मुक्तं यदुत विरुचितं वीतरागज्ञायैव त्यक्त ग्रंथ प्रपंचं शिवमृत पथं श्रद्धधन्मोह शान्ते मार्ग श्रद्धान माहु पुरुषवर पुराणोपदेशोपजाता या संज्ञानागमाब्धि प्रसृतिभिरुपदेशादिरादेश दृष्टि आकरण्याचार सूत्रम मुनिचरण विधे सूचनम श्रद्धान सूक्तासौ सूत्र दृष्टि दुर्धर्यमते अर्थसार्थस्य बीजै कैश्चित् जातोपलब्धे असमशम वशाद् बीज दृष्टि पदार्थान संक्षेपेनैव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान साधु संक्षेप दृष्टि यश्रुत्वा द्वादशांगी कृतरुचिरततम विद्धि विस्तार दृष्टिं संजातार्थात् कुतश्चित् प्रवचन वचनान्यतरेणार्थ दृष्टिः दृष्टि सांगांग बाह्य प्रवचनम अवगाह्योत्थितायावगाढ़ा कैवल्यालोकितार्थे रुचिरिह परमावगाढ़ेति रूढ़ा परमावादी गाढ़ेति रूढ़ा। अभी ये पूरा ही उन्होंने 10 प्रकार के जो भेद है उसका इसमें वर्णन किया है, पहले हमने पढ़ ही लिया था, अभी इसमें से फिर दोबारा पढ़ते। आज्ञा सम्यक्त्व, मार्ग सम्यक्त्व, वो उपदेश सम्यक्त्व का निर्देश। आज्ञा सम्यक्त्व के बाद एक कॉमा लगा लो। इन तीन छंदों में 10 प्रकार के सम्यक्तों का स्वरूप कहा है। शास्त्र पठन के बिना ही वीतराग देव की आज्ञा प्रमाण ही उनके वचन सुनकर सन्मार्ग का श्रद्धान होना सो आज्ञा सम्यक्त्व है। ग्रंथ विस्तार के सुने बिना ही दर्शन मोह की शांति होने से बाह्य अभ्यंतर परिग्रहों से रहित कल्याण रूप अमृत पथ का मोक्ष मार्ग का श्रद्धान होना सो मार्ग सम्यक्त्व है। यानी वहाँ ये बात हमने देखी थी कि मुनियों के वो आचार आदि देखकर या वो तो आचारांगों की बातें सुनकर भी उसका श्रद्धान हो जाता है। एक ही बात है, देखो। हाँ वही मार्ग समेत नहीं, वो मार्ग की श्रद्धा हो जाती। पहले हमने पढ़ी थी, आप थी ना उस दिन? नहीं थी। देखो ये निकालो, पेज नंबर 66 पर वो मार्ग की बात है। दो नंबर है 66 पेज पर। दूसरा है मार्ग सम्यक्त्व। जैन सिद्धांत के मार्ग में त्याग और तपस्या की प्रधानता है। अहिंसा का पालन, जितना पालन ये साधुजन करते हैं वह पालन किए जाने वाली अहिंसा का उत्कृष्ट रूप है। भोजन का कोई साधन साथ में न रखना, यह अहिंसा का ही एक उत्कृष्ट रूप है। किसी भी परिस्थिति में अपने हाथ से भोजन न बनाना, उसको अधक कर्म कहते हैं ना, हाथ से भोजन बनाना वगैरह। और श्रावक के घर भी यदि यह जान जाए इसने केवल मेरे लायक ही और मेरे लिए ही आहार बनाया है, उसे भी नहीं लेते। जिसको उद्दिष्ट आहार कहते हैं उसका भी उनके त्याग होता है। सब घर के लिए बन रहा हो उसमें से कुछ ले लेना, यह सब अहिंसा का ही तो एक उत्कृष्ट रूप है। अभी बहुत सारी बातें बताई हैं। ये श्रावक यानी वो मुनियों का आचार और नीचे श्रावक का आचार है, उसके भी जो दर्शन उसका प्रभाव हो जाता है। देखो अभी नीचे के पैराग्राफ में 1, 2, 3, 4 चौथी पांचवी लाइन, इन सब का वर्णन सुनकर और इस मार्ग को आंखों से निरख कर मिला। मुनि मार्ग और श्रावक की जो प्रतिमाएं वगैरह होती है उस संबंधी, उसका वो देखकर सुनकर सहसा श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो उद्धार का मार्ग है तो यह है। केवल बाह्य आचार नहीं, उसमें तो अंतरंग वो तत्व ज्ञान भी होना चाहिए केवल, परंतु उसके तो उसके प्रति दृढ़ता हो जाती है कि यही मार्ग है करके। निश्चय से आत्म तत्व का श्रद्धान ज्ञान आचरण मोक्ष का मार्ग है। ये निश्चय बिना का केवल बाहर ही उसको मोक्ष मार्ग नहीं कहा। और इस प्रकार के मार्ग को निरख कर जो उत्पन्न हो श्रद्धान, उसको मार्ग सम्यक्त्व तो कहा है। ये बातें उन्होंने पहले बताई थी, इसलिए यहाँ केवल अर्थ बता रहे हैं। तीनों श्लोकों का अर्थ बताएंगे फिर वो विस्तार करेंगे। ये पेज नंबर 71 पर आ गए। तीसरी बात, ये 12वें नंबर के श्लोक में ये तीन प्रकार के सम्यक्त्व का वर्णन है ना, इसलिए वो तीनों की बात है। पुराण पुरुषों के उपदेश से उत्पन्न हुए सम्यक ज्ञान के बल से जो शुद्ध दृष्टि होती है उसे उपदेश सम्यक्त्व कहते हैं। अब सूत्र सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व, संक्षेप सम्यक्त्व का निर्देश। मुनियों के आचरण का विधान बताने वाले आचार सूत्रों को सुनकर जो सन्मार्ग का श्रद्धान होता है उसे सूत्र सम्यक्त्व कहते हैं। यानी मूल सूत्रों को सुनकर गणित ज्ञान के कारणभूत करण सूत्र रूप बीजों द्वारा दुर्गम पदार्थ समूह को जान लेने से प्रकट हुई सन्मार्ग की श्रद्धा को बीज सम्यक्त्व कहते हैं। ये जो कठिन गणित है ना उसके कर्ण सूत्र होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, और उसके द्वारा तो हमने कितने जो हमारे डायरेक्ट ज्ञान के विषय नहीं है ऐसे पदार्थों को भी हम जान लेते हैं, तो उसके श्रद्धा दृढ़ता हो जाती है, तो उसके बाद उसके जो आत्मसन्मुखता होगी उसको सम्यक तो होगा। तो उसने वो कारणभूत बताया है, इसलिए उसको बीज सम्यक तो कहते हैं। पदार्थों को संक्षेप कथन से ही जानकर यथार्थ बोध की झलक होने से उत्पन्न हुई निर्मलता से जो सन्मार्ग का श्रद्धान होता है उसे संक्षेप सम्यक्त्व कहते हैं। विस्तार सम्यक्त्व, अर्थ सम्यक्त्व, अवगाढ़ सम्यक्त्व और परम अवगाढ़ चाहिए, परभावने परमावगाढ़, भा के बदले माँ करना, परमावगाढ़ समझ में है, कहाँ करेक्शन करना, हाँ भा के बदले माँ करना, परमावगाढ़ उनका निर्देश। द्वादशांग वाणी रूप आगम विस्तार को सुनकर जो सुतत्व की रुचि होती है उसे विस्तार सम्यक्त्व कहते हैं। ये सातवां हुआ, अभी आठवां। आगम के मूल वचनों को बिना सुने भी उनके अर्थों के श्रवण से जो तत्व दृष्टि जगी है उसे अर्थ सम्यक्त कहते हैं। यानी मूल आगम के सूत्र या वाक्य नहीं सुने परंतु विस्तार से या उसके अर्थों को बताया, किसी ने खोल कर बताया, जो हम कहें ना ये टीका है या जो अभी हमारे स्वामी जी ने हमें इतना खोल कर विस्तार से बताया। मूल जो आगम जो चले आए हैं वो मूल गाथाएं तो अलग बात है और उसका विस्तार हमने सुना तो ये अर्थ जान लिया, इसको कहेंगे। जो तत्व दृष्टि जगी है उसे अर्थ सम्यक्त कहते हैं। ये सब ज्ञान में जो तत्वों को जान लेना है यही बात है और उसी से ये श्रद्धान यानी रुचि जगती है, तत्वों की रुचि जगती है और फिर बाद में श्रद्धान हो जाता है। द्वादश अंग और अनेक अंग बाह्य सहित प्रवचन परमागम का अवगाहन करके उत्कृष्ट रूप से स्थित जो सम्यक्त्व उसे अवगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। इसका भाव यह है कि श्रुत केवली महाश्रमण, महाश्रमण मुनिराज श्रुत केवली महाश्रमणों के सम्यक्त्व को अवगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। इसका यह भाव है केवल ज्ञानियों के अर्थात परमात्मा प्रभु के सम्यक्त्व को परम अवगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। जो एक ही सम्यक्त्व के निमित्त भेद से 10 भेद कहे गए, यह निमित्त की अपेक्षा उसके भेद बताए। 15 नंबर। समबोध वृत्त तपसाम पाषाणस्येव गौरवं पुंसः पूज्यं महामणेरिव तदेव सम्यक्त्व संयुक्तम्। ये गाथा और कहीं आई है कि मुझे बहुत यानी ये श्लोक मुझे परिचित है बहुत। हाँ ऐसा लगता है मुझे, ठीक है। प्रारंभ में ही सम्यक्त्व आराधना के निर्देश का कारण, इस ग्रंथ के प्रारंभ में सम्यक्त्व की आराधना के लिए उपदेश किया है, यानी सबसे प्रथम सम्यक्त्व प्राप्त करने का उपदेश किया है। प्रथम ही प्रथम सम्यक्त्व की आराधना के लिए ही क्यों कहा गया, सम्यक्त्व में ऐसी क्या खासियत है, उसका दिग्दर्शन कराने के लिए आचार्य देव इस छंद में यह कह रहे हैं कि कषायों का उपशम शम, शम यानी उपशम यानी कषायों के उपशम यानी मंदता, शास्त्रों का अभ्यास करके बोध पाया हुआ ज्ञान ये बोध और पापों का त्याग रूप चारित्र ये वृत्त, वृत्त यानी उसकी वृत्ति यानी वो आचरण की बात है, तथा बड़ी दुर्धर तपस्याएं तपस्याएं ये सब इस जीव को पत्थर की तरह बोझ रूप है यदि सम्यक तो नहीं है, तो सम्यक तो बिना अगर वो क्या क्या लिया सब ले लिया उसमें कि सम्यक तो नहीं है और कषाय उपशमित है, यानी बहुत मंद कषाय है, भोला है, भला है, तो ये तो बोझ है उसके लिए। यानी शास्त्रों का बहुत अभ्यास किया, ज्ञान पाया है, परंतु सम्यक तो नहीं है। बहुत उसने आचरण पापों का त्याग रूप चारित्र धारण किया बाह्य में, मुनि भी मुनिव्रत भी अंगीकार किए या दुर्धर तपस्याएं भी की, तो ये सारा बोझ के समान है, उससे उससे कुछ लाभ नहीं। हाँ लक्षण ऐसा लगता है मुझे, रत्नगण शावकाचार में होगा ये। तत्व निर्णय नहीं हुआ है, वो राग और अपने ज्ञान की भिन्नता नहीं भाषित हुई उसकी। राग में ही धर्म मान लिया, शरीर की क्रिया में ही अपना मान लिया। भाई बोलने के लिए तो सब जानता है, ये तो शरीर जुदा है, मैं जुदा है, बोलेगा, बोलना भी सीख किया, परंतु वो क्या भाषित हुआ उसको? जितना शरीर से वस्त्र भिन्न भाषित हो रहा है, क्या इतना ही अपने से ये राग आदि भिन्न भाषित हो रहे, शरीर भिन्न भाषित हो रहे उसको? तो नहीं, अभी यानी अभी उसको अनुभव नहीं है। किसका वृत्त ने आचरण बाह्य व्रत आदि पापों के त्याग रूप चारित्र शब्द आता है ना, वृत्ति ऐसा भी शब्द आता है बहुत, वृत्ति उठ गई हमको, ऐसा भाव हुआ, परिणाम हुआ। ये सब इस जीव को पत्थर की तरह बोझ रूप है। कब? यदि सम्यक्त्व नहीं है तो, और वही के वही सब सम्यक्त्व करके सहित हो तो महामणि की तरह वे सब पूज्य हो जाते हैं। महामणि है ना, हीरे जवाहरात, यानी सम्यक तो सहित है तो ये शोभा देते हैं, सम्यक तो से रहित है तो बस वो तो कोरा क्रियाकांड जिसको कहेंगे, उससे कुछ लाभ नहीं है इस जीव को। जैसे आपके पास 7 जीरो है, 7 7 कितनी वैल्यू है? कुछ नहीं। उसके पहले उसके पीछे 1 लगा दो, हाँ होगी होगी, कितनी होगी? 1 के ऊपर 7 जीरो कितनी वैल्यू होगी? 1 करोड़ होगी ना, और अकेले 7 जीरो, हम कहते हमको करोड़ चाहिए, पहले 7 जीरो इकट्ठे करते हैं, वो 1 की वैल्यू करोड़ है, समझ में आती है बस? तो एक कितना भी व्रत तप करे तो उसकी वैल्यू 0 है। अंक बिना की बिंदी कहते उसको, एकड़ा बिना नहीं बिंदी, गुरुदेव भी कहते थे, और ये सत्ता स्वरूप में भी आया है, रत्नगण शावकाचार्य में भी लिखा है उन्होंने, रेफरेंस दिया उसका। सम्यक्त्व रहित उपशम भाव का बोझ, उस दिन बात आई थी ना, वो प्रश्न समय वगैरह जो मिथ्या दृष्टि के भी देखने में आते हैं, तो ये मिथ्या दृष्टि के सम्यक्त्व रहित उपशम भाव का बोझ बताया ना यहाँ पर। अनंतानुबंधी कषाय के मंद उदय में, देखो मिथ्या दृष्टि है तो उसके अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है, तो कभी तीव्र भी होगा, कभी अत्यंत मंद भी उदय होगा, परंतु फिर भी वो है अनंतानुबंधी, तो वो मिथ्या दृष्टि ही है। लोग तो उसी में संतुष्ट होकर रह जाते हैं, कहते भी आप इतना शास्त्र पढ़ते हो, इतना गुस्सा करते हैं, आपसे हम अच्छे हैं, हम कोई अभ्यास नहीं करते और हम शांति से रहते, आप सबको मिले होंगे ऐसे लोग बताने वाले। यह कहते अनंतानुबंधी कषाय के मंद उदय में मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी साधु के भी, अभी यानी वो मंद में मंद उदय तो उनके चल रहा है, इतनी शांति आ जाती है, कषायों का उपशम हो जाता है कि कोई बैरी उन्हें कोल्हू में पेल दे तो भी, कोल्हू समझते है? वो तेल निकालते है ना, हाँ उसमें से वो पत्थर से घानी, तेल की घानी, उसमें पेल देने, उसमें वो पीस दे उसमें अंदर, तो भी वह उस शत्रु पर द्वेष भाव नहीं लाता है। किंतु अभी क्या भूल हो गई अभी उसकी, फिर आत्मा का अनुभव क्यों नहीं, सम्यक तो क्यों नहीं, आपका प्रश्न है ना, उसका उत्तर देते सुशीला बेन। किंतु निर्विकल्प शुद्ध ज्ञायक स्वरूप का भान न होने से, वो शुभ भाव में इतना एकत्व है वहां, अपने शुभ विकल्पों में ही वह अटका हुआ है। अब जिसको तत्वज्ञान का भी कुछ पता नहीं है, कहो या तत्वज्ञान पढ़कर भी वो भेद विज्ञान नहीं हुआ है, तो वो शुभ क्रिया में, शुभ राग में ही वो अपनत्व कर बैठा है, और ये ये किया मैंने, अभी मैंने ये प्रतिमा अंगीकार की, अभी मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ऐसा ही चलता है। आप आम तौर पर जिसका अभ्यास नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, वो तो इन्हीं में धर्म मानते हैं। पहले हमने ये ऐसा किया, हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, अब ये करना है, अभी उसके आगे ये प्रतिमा लेनी है, अभी हमने दूसरी प्रतिमा ली, अभी सातवीं प्रतिमा का अभ्यास कर रहे। आप देखो समाज में तो प्रयोजन वही है, परंतु तत्व विचार के बिना प्रयोजन खाली बोझ है, यही तो कह रहे। प्रयोजन उसका उपाय भूल गए, यानी वो बाह्य में ही उनको मोक्ष मार्ग भाषित हो रहा है। होगा तो अच्छी बात है ना, पर होगा तो तत्व निर्णय से ही होगा, इनका ही कारण नहीं होगा। लोग क्या कहते हैं, हमने इतना तो कर दिया ना, इतना तो अच्छा है ना, कोई अच्छा नहीं है। पहले में पहले सम्यक तो होना चाहिए, ये पहले में पहले व्रत, और ऐसा भी हो जाता है इतना हम कर रहे हैं ना तो उसमें थोड़ा अहम आ जाता है। आपने देखा होगा लोग कि हम तो इतना कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे, ये तो पापी है, परंतु वो तत्व विचार नहीं कर रहा है तो उससे कुछ नहीं, उसको बस थोड़ा जिसको कहें शांत है, बस बस उपशम भाव का बोझ चल रहा है। तत्व श्रद्धा से उससे ज्यादा पुण्य बन रहा है, मालूम नहीं है। तत्व श्रद्धा नहीं, तत्व विचार चल रहे ना, तत्व विचार के काल में अच्छा पुण्य बन रहा है उच्च जाति का। वहां तो लगता है हम क्रिया से पुण्य, क्रिया से तो कुछ नहीं हो रहा है, परिणाम से हो रहा है, परंतु मिथ्या तो साथ में बंद ही रहा है, अनंत अनुबंध आदि सब बंद रहे। मालूम नहीं पड़ता, नहीं कहा, वो द्वेष नहीं करता, वो द्वेष नहीं करता है, सहन कर लेता है। अभी सहन कर लेना है, मैं सही मुझे माफ करना है, वो तो ऐसा विचार करता होगा ये मेरा ही कुछ कर्म का ये दोष है, ऐसा है वैसा, मगर वो शुभ राग के साथ एकत्व छूट, ये अभी हमने देखा ना भेदाभेद विपर्यय में क्या लिया, शुभ भाव मेरे से जुदा है ये बात नहीं, मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो ज्ञानमय हूँ, शुभ राग मेरे में उत्पन्न हुआ है पर वो मेरा कायमी स्वभाव नहीं है, ये नक्की करना है। इतने से चूक जाते हैं, ये राग आदि के साथ जो एकत्व है ना, क्योंकि शरीर जुदा है वो तो अन्यमति भी कहेगा, वो तो सब कुछ, उसके लिए कोई तत्व ज्ञान का अभ्यास की जरूरत नहीं है। राग से जुदापन की बात बहुत मर्म की बात, देखो नीचे पढ़ रहे थे ना, किंतु यानी वो इतना सब अंगीकार किया, किंतु निर्विकल्प शुद्ध ज्ञायक स्वरूप का भान न होने से, निर्विकल्प नहीं, वो राग रहित वाला है, मेरा ज्ञायक स्वभाव कैसा है, शुद्ध किसको कहा, राग बिना का उसको शुद्ध कहा, भान न होने से अपने शुभ विकल्पों में ही वह अटका हुआ है, यानी अपने को उस रूप मान रहा है, उसमें अटका हुआ है, वो करने जैसा मान रहा है। श्रद्धा में क्या लिया उसने, वो करने जैसा है, और इसे मैं और आगे बढ़ूंगा। हाँ देखो, ज्ञानी के भी होगे कि नहीं होगे, ज्ञानी के तो होगे, और ये करने लायक मानता है, ज्ञानी के हो रहे फिर भी वो कहते ये तो करने लायक नहीं है, ये शुभ भाव से हटकर अपने में स्थिर रहे, ये लायक है, जो मान्यता होंगी ना, लड़की पैदा हुई तो ये पराया है, ये हमने मान लिया है, छोड़ा नहीं उसको, ऐसे शुभराग ज्ञानी के भी आते हैं, पर वो जानता है कि ये मेरा विभाव भाव है, वो मेरे से जुदा है, मैं तो ज्ञान में है, अनुभव सही जान रहे, केवल बोलना सीखने गया है। क्या होता है, अभ्यास से बारंबार सुनने से बोलना बोलने को सीख जाते हैं, परंतु वो अंदर से भाषित होना चाहिए। मैंने साधु व्रत लिया है, साधु को क्रोध न करना चाहिए, समझ में है ना, उस अपने को ट्रेन कर दिया अभी। साधु के लिए तो शत्रु और मित्र दोनों समान है, सम्मान और अपमान दोनों बराबर है, इस प्रकार के विकल्पों में उसकी अटक हो गई है, क्योंकि मैंने अपने को वैसा मान लिया तो मुझे अभी ऐसा आचरण करना चाहिए, अभी उसने अपने को उसमें डाल दिया तो उस रूप वो बिहेव भी और उसी को प्रयोग भी मानता है, यानी कुछ प्रयोग भी करना चाहिए कि नहीं, ये इस प्रकार से प्रयोग करना चाहता है। यह सहज भाव से शांति की वृत्ति नहीं है, यानी उसका सहज शांति नहीं उसकी, किंतु जानबूझकर उपयोग लगाकर उपविकल्पों में रमकर शांति बनाई है। देखो कितना अच्छा वर्णन किया उसका, ये जो प्रशम कहो उपशम कहो उसका, ये सहज भाव से जो आत्मा में से शांति प्रकट होती है वो नहीं है उसकी निराकुलतावादी। जानबूझकर उपयोग लगाकर विकल्पों में रमकर शांति बनाई है, ऐसा बड़ा उपशम भाव भी, उसको प्रशमाभास कहेंगे उस दिन के आपके प्रश्न का उत्तर आएंगे। तो ऐसा उपशम भाव भी इस जीव पर मिथ्यात्व की स्थिति में एक पाषाण की तरह बोझ हो गया है। माथे पर बहुत बड़ा भारी पत्थर उठा लो, बोझ ढो, बोझा ढो रहा है ना कोई, ये बिल्डिंग बांधते हैं ना बिल्डर्स लोग, तो वहां वो जो उठाते हैं ना बोझा, तो ऐसे बोझ हो रहा है, पाषाण की तरह बोझ हो रहा है। विषय कषायों का बोझ तो प्रकट ही है, किंतु ऐसा उपशम भाव भी सम्यक बिना बोझ कहा गया। और मानता क्या है, अरे ये तो कितने विषय कषाई है और मैं तो देखो कैसा ये इतना कर रहा हूं, तो उसमें उसने अपने ऊपर बोझ बना लिया।
लोग भी कहते हैं, तो मुनि कहते हैं छोड़ दो,
मुनि कहते हैं वो तो बात अलग है, लोग भी कहते हैं उतना तो वो कर रहे हैं ना।
हाँ ऐसे ही कहते हैं ना, आप इतना आगे बढ़ गए, लोग भी कहे ना वो तो इतना कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। यानी वो तत्व ज्ञान की बातें तो बिल्कुल सोचते नहीं और कहते भी है, नहीं नहीं वो तो हाई लेवल की बात है, अभी हमारी आपकी लेवल की बताओ, क्या लेवल है हमारी, मानवता की बात हमको सिखाओ, सदाचार की बात सिखाओ। अरे सदाचार तो वो माँ बाप भी सिखाएंगे ना घर में रहने रहते हैं, तो अभी शास्त्र सुनने को आएगा तो कोई तत्व की सीधी बात सुनेगा कि जिसमें कल्याण है जीव का, क्योंकि रोज इतनी उम्र हो गई फिर भी सदाचार अभी सीखना है क्या, ये बचपन से घरों में ही सिखाया जाता है सदाचार की बात, स्कूलों में सिखाई जाती है, अभी भी उसको शास्त्र सुनने के नाम पर भी सदाचार की बात सुननी है। देखो 72 नंबर पेज पर तीसरी लाइन, प्रकृत उपशम भाव की हीनता का दृष्टांत पूर्वक समर्थन। प्रकृत उपशम भाव नहीं, ऐसा जो जानबूझकर लादा हुआ उपशम भाव है, खोटा है वो, सच सहज नहीं है, उसका दृष्टांत देते हैं, वो कैसा हीन है, वो उत्कृष्ट नहीं है, लोग उसी को उत्कृष्ट समझते भी है और कहते भी, उन्होंने इतना तो किया, आप तो खा पी कर रहे मौज कर रहे हो, उनसे तो ये तो आपसे भले है ना, इतना तो करके दिखाओ, तो उसका दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे मणि की जाति और पत्थर की जाति एक पाषाण कही गई है, ये रत्नकरण श्रावकाचार में यही सब है बातें, उन्होंने वहीं से कुछ बातें ली है दृष्टांत। क्या कहते हैं, ये जो कोई आपका हीरा जवाहर है, डायमंड्स है, वो क्या है, पत्थर ही तो है ना, एक किसी जाति के पत्थर है, पृथ्वी का ही तो है वो, और जो ये बड़े हमारे पत्थर जो लगे हैं बिल्डिंग के अंदर डालते हैं वो भी पत्थर है, मणि भी तो आखिर पत्थर है, और यह छतों पर लगाया जाने वाला, भीतों में चिना जाने वाला पत्थर भी तो पत्थर ही है, फिर भी इस पत्थर की कोई महिमा नहीं है, मूल्य नहीं है, और मणि, मणि ने जो माणक हीरा जो कुछ है, दो चार रत्ती का भी हो तो भी उसकी महिमा मानी गई है, रत्ती ने वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो ग्राम हम कहेंगे, मिलीग्राम ग्राम जो कुछ, ऐसे ही यह प्रशम भाव सम्य दृष्टियों के भी है, मिथ्या दृष्टियों के भी हैं। देखो सुशीला बेन का प्रश्न आ गया, पर सम्यक रहित मिथ्या दृष्टि जनों का शुभ भाव की अटक के कारण बनाया गया यह प्रशम भाव भी महिमा नहीं रखता मोक्ष मार्ग के लिए, यानी उससे मोक्ष मार्ग में कुछ हासिल नहीं हो रहा। बिल्कुल, अभी उसका सम्यक तो नहीं हुआ है तो अभी मिथ्या तो में है, आखिर बिल्कुल व्यर्थ यो तो यो नहीं जाता कि प्रशम भाव से विशेष पुण्य का बंध होता है, उत्तम आयु प्राप्त होती है, व्यर्थ तो यो नहीं गया किंतु मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं हुआ, इस दृष्टि से व्यर्थ गया। क्या कहा, इतना संयमी है, भले देवायु बांध ली है, लंबी आयु बांध दी वहां की देव की, ये हो सकता है, बिल्कुल व्यर्थ है नहीं, उसके कारण बंध तो है ही है, परंतु कहते मोक्ष मार्ग उससे नहीं शुरू हुआ, देव का भोग मिला तो क्या हुआ, हम अनादि से है तो अनंतो बार तो देव में जाके आए कि नहीं आए, ये शम की बात हुई ना, सम्यक तो रहित, अभी शम के बाद बोध यानी ज्ञान, शास्त्र ज्ञान को सम्यक्त्व रहित ज्ञान का भार, ज्ञान की बात देखो, अभव्य साधु के भी 11 अंग 9 पूर्व का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, इतनी तप की महिमा है, ऐसा घोर तप करता है तो इतना उसको, इतने तक उसका क्षोभ हो सकता है, यह बहुत विशाल ज्ञान है, क्योंकि हमने देखा ना एक पद में इतने अक्षर, अभी इतने एक एक अंग में कितने, ऐसे पूरे 11 अंग के कितने हो जाते हैं, और 12वें अंग में से 9 पूर्व भी ले लिए इसमें, इतना तक ज्ञान हो जाने पर भी जिसको सहज भाव में अनुभूति नहीं हुई, यानी अपना सहज भाव क्या है, ज्ञान या हमारा सहज भाव, सहज ऑलरेडी हमारी जो स्वतः स्थित जो शक्तियां हैं उसका जो परिणमन है वो हमारा सहज भाव है, और ये सारे जो विभाव है वो विभाव जो है वो जुद्य है, औपाधिक भाव है, वो सहज नहीं है, वो हमारे से भिन्न है, और ये भिन्न भावों में आत्मबुद्धि कर लेता है। तो कहते जिसको सहज भाव में अनुभूति नहीं हुई है ऐसे पुरुष को इतना विशाल ज्ञान भी पाषाण की तरह एक बोझ बताया गया, क्योंकि जब तक मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हुआ है और इतना हमने पढ़ लिया, हमने इतने को पढ़ा लिया, उससे कुछ फायदा नहीं। दृष्टि मोक्ष मार्ग में देनी है उसकी अपेक्षा यह समस्त कथन है। पुण्य के रुचिया जीव तो यह आशंका करेंगे कि क्या बोध की बात कही जा रही है, इतनी बड़ी तपस्या गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, विभिन्न कठिन साधनाएं, इन्हें बोझ कहा जाए, वो उनसे उत्पन्न हुआ ऐसा ऊंचा ज्ञान जो हरेक में संभव नहीं है, ऐसे ज्ञान को भी बोझ कहा जाए, लेकिन संसार संकटों से दूर करने वाले मोक्ष मार्ग की दृष्टि से निरखी तो उसकी दिशाएं बिल्कुल भिन्न है, तो संसार की दिशाएं, तो मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं हुआ है, और उसमें भी देखो ऐसा ज्ञान भी उसी को होता है, इतने सब घोर तपस्या वगैरह करने वाले को, ऑर्डिनरी वाले को भी नहीं लिया, तो क्या ये सारा बेकार गया, तो हाँ बेकार ही गया, मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हुआ, अतएव वह मोक्ष मार्ग का काम नहीं दे सकता है। सम्यक्त्व की सहज दिशा हो गया, वो कल पढ़ेंगे, समय हो गया ना, जावाणी के ज्ञान से सूझे।